सामंती व्यवस्था का प्रसार और धर्मवाहक भाषाएं। भारत के सामाजिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि प्राचीन गढ़ समाजों के बीच सामंती व्यवस्था का अभ्युदय कहाँ हुआ और शेष भारत में इसका प्रसार कब और किस प्रकार हुआ। यह भारतीय भाषाओं के इतिहास, भारतीय साहित्य के इतिहास की भी महत्वपूर्ण समस्या है। ऋग्वेद की सभ्यता किस समय की है, सिंधु घाटी की सभ्यता उससे पहले की है या बाद की है, ये प्रश्न विवादास्पद हो सकते हैं। जो तथ्य निर्विवाद है वह यह है कि ये दोनों समस्याएं आदिम गढ़ समाजों की सभ्यता नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता के मुख्य केंद्र नगर हैं और ये नगर व्यापार और विनिमय के केंद्र हैं। ऋग्वेद में जिस समाज का चित्रण है वह गढ़ व्यवस्था के विघटन काल और सामंती व्यवस्था के अभ्युदय काल का समाज है। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों के केंद्र उत्तर भारत में हैं। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है। गढ़ व्यवस्था के युग में यहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती थी और उनमें किस तरह का साहित्य रचा गया, इसकी कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं है। सिंधु घाटी की लिपि जब पढ़ ली जाएगी तब भी इस समस्या का समाधान न होगा, क्योंकि पृष्ठ संख्या 80, यह भाषा किसी गढ़ समाज की भाषा न होगी। तमिल भाषा का जो प्राचीनतम साहित्य मिलता है वह सामंती व्यवस्था का साहित्य है, प्राक्सामंती व्यवस्था का नहीं। गढ़ व्यवस्था से संबद्ध प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में ही प्राप्त है। जिस समय वैदिक मंत्रों की रचना हुई उस समय विभिन्न आर्यगढ़ समाजों के बीच परस्पर संपर्क और विनिमय काफी बढ़ चुका था। वैदिक भाषा मुख्यतः भरतगढ़ की भाषा है, पर वह वैदिक काल में गढ़ समाजों के बीच संपर्क भाषा बन चुकी है और उसमें अनेक समकालीन गढ़ भाषाओं के तत्व समाहित हो चुके हैं। सामंती व्यवस्था के प्रसार का प्रथम और प्रमुख माध्यम यह वैदिक भाषा है। आगे चलकर इसी के आधार पर लौकिक संस्कृत का विकास होता है। वैदिक काल में जिन गढ़ भाषाओं का व्यवहार होता था उनमें रचित साहित्य अभिलेखों आदि के रूप में कोई सामग्री प्राप्त नहीं है। गढ़ व्यवस्था का विघटन होने के बाद नए श्रम विभाजन के आधार पर चार वर्णों वाली सामंती व्यवस्था कायम होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पुराने गढ़ समाजों के स्थान पर नए जनपद कायम होते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पौराणिक धर्म, इन तीनों का प्रसार इन्हीं जनपदों के युग में होता है। इन जनपदों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, किंतु तीनों धर्मों की वाहक कोई जनपदीय भाषा नहीं है। इनकी वाहक है संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। इन धर्मों के संस्थापकों ने जनपदीय भाषाओं में जो भी उपदेश दिए हो उनके प्रमाण स्वरूप अब कोई सामग्री प्राप्त नहीं है। जैसे जैसे सामंती व्यवस्था का ह्रास होता है वैसे वैसे धर्मवाहक भाषाओं और जनपदीय भाषाओं का अंतर विरोध बढ़ता है। सामंती व्यवस्था के अभ्युदय काल में जो धर्मवाहक भाषा सामाजिक विकास का साधन है वह इस व्यवस्था के ह्रास काल में सामाजिक विकास की अवरोधक बन जाती है। धर्म का अभ्युदय उसका संघबद्ध रूप सामंती व्यवस्था के स्थापना और पोषण के लिए ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य होता है। वैदिक पौराणिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों के केंद्र उत्तर भारत में थे। समस्त भारत में सामंती व्यवस्था के प्रसार के साथ इन तीनों धर्मों का प्रसार भी जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के साहित्य का कोई ऐसा युग नहीं है जब वह प्रदेश इन धर्मों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहा हो। भारतीय समाजों के सामंतीकरण की जो प्रक्रिया उत्तर भारत में घटित होती है वही तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत में घटित होती है। इस प्रक्रिया का प्रधान माध्यम संस्कृत थी, इसलिए यह बात सहज बोधगम्य है कि तमिल साहित्य का कोई ऐसा युग नहीं है जब उसके रचयिताओं का संपर्क संस्कृत अथवा पाली और प्राकृत से न रहा हो। सामंती व्यवस्था और उक्त धर्मों का प्रसार एक अखिल भारतीय प्रक्रिया है। भारत का जो भी प्रदेश सामंती व्यवस्था में प्रवेश करता है वह इस प्रक्रिया से अभिन्न रूप से रूप में संयुक्त हो जाता है। सामंती भारत के इस अखिल भारतीय मानचित्र को ध्यान में रखकर ही हम विभिन्न प्रदेशों में रचे हुए साहित्य का विवेचन कर सकते हैं।